ॐ शांति, ॐ शांति। प्यारे बाबा ने हमें क्या बनाया है, गीत में सुना क्या बनाया है बाबा ने हमें, ज्ञान सितारे। तो सभी यहां कौन बैठे हैं? ज्ञान सितारे, दुनिया को चमकाने वाले ज्ञान सितारे। तो आज की मुरली है ज्ञान और सेवा। कभी बाबा कहते हैं योग और सेवा, कभी धारणा, कभी केवल सेवा, कभी केवल ज्ञान, लेकिन आज है ज्ञान और सेवा। तो ज्ञान सितारे बनी है तो ये केवल हमारे लिए थोड़ी है, औरों को भी ज्ञान का प्रकाश देना है। तो आज बाबा ने विशेष रूप से टीचर्स को कहा है कि आप कहीं भी जाते हो तो दूसरों को आप समान बना करके उनको ज्ञान मुरली सुनाने दो, तो वो भी तैयार हो जाए, टीचर बन जाए। हम देखते हैं ना भट्टी में कितनी बड़ी बहनें आ जाती है, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप इतने सारे आ गए हो, आपके पीछे सेंटर कौन संभाल रहा है? तो कहाँ, बहनों को तैयार कर दिया है ना, कर दिया है ना, बिल्कुल। तो निश्चिंत होकर के भट्टी कर रहे हो ना कि आए क्या हो रहा होगा सेंटर पर, ये चिंता है नहीं, उनको आप समान बना लिया है। लेकिन फिर कई भाई बहने ऐसे हैं वो देह अभिमान के कारण क्या कहते हैं, हमारी टीचर तो चली गई, अब हम सेंटर पर ही नहीं जाएंगे, टीचर अगर है तो हम पुल्ली उनसे सुनेंगे, हम किसी और से नहीं सुनेंगे, ऐसे भी कई कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बाबा की मुरली हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। इस खजाने को हर एक को अधिकार है, सुनने का भी और सुनाने का भी। और बाबा ने वैसे बहनों को ही मुरलीधर बनाया है, ये व्यास की गद्दी बाबा ने बहनों को दी है। लेकिन कहीं कहीं सेंटरों पर हमने देखा है कई जगह भाई भी सुनाते हैं, माताएं भी सुनाती है। तो ये तो भगवान का ज्ञान है, हर एक को अधिकार है सुनाने का। तो आज बाबा ने विशेष कन्याओं को भी खड़ा किया है, हाँ, सेवा करने लिए तैयार हो जाए। और नीचे तो आज ये कन्याओं की भट्टी शुरू हो गई है, बहुत सारी कन्याएं जो घरों में रहती है वो भट्टी करने आई है। तो उनमें से भी कितनी तैयार हो जाएगी जो बाबा के सेंटर पर रहेंगी। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 4/7/2025 है। मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो। क्यों, हाँ, क्यों बंधन मुक्त बनकर सर्विस पर तत्पर रहो? क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। वो लौकिक पढ़ाई, फिर उससे कमाई, तो उससे क्या मिलेगा? बाबा कहते चने और भुगरे। और यहाँ जो बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं वो जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो। कितनी कमाई है। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए मुरली की पॉइंट्स पर समझाने की? ब्राह्मण यानी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समान कैसे बनाएंगे? हाँ, अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समान भी कैसे बनाएंगे। ब्राह्मणी बिगर मुंजना नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स भी तैयार हो जाएं कि अगर मेन टीचर नहीं है तो स्टूडेंट्स भी टीचर बन के बाबा की मुरली सुना सकते हैं। ब्राह्मणी बिगर मुंजना नहीं चाहिए, पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो ये भी प्रैक्टिस करनी है। बाबा तो यहाँ तक कहते थे आप सेंटर जमा करके फिर दूसरा सेंटर पर आप जाओ, वहाँ जमाओ और पहला सेंटर औरों को दे दो, वो चलाते रहेंगे, आप दूसरा सेंटर संभालो, फिर उनको आप समान बनाओ, फिर तीसरा सेंटर, तो जो तभी तो बाबा कहते चक्रवर्ती बनेंगे। तो ये भी प्रैक्टिस करनी है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य है तुम्हारे जीवन में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और ये निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। हम किसकी मुरली सुन रहे हैं? परमात्मा बाप की मुरली। और कौन सुन रहे हैं? आत्मा। तो बच्चे जब सुनते हैं बाबा की मुरली तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और ये निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। ये डायरेक्शन, ये जो मुरली है ये भगवान के की श्रीमत है, ये डायरेक्शन है भगवान के। ये डायरेक्शन अथवा मत एक बाप ही देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वो है बेहद का बाप, जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बेहद का बाप ऊंच ते ऊंच भगवान है। बहुत मनुष्य है जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते ही नहीं है। है दुनिया में बहुत लोग, परमात्मा मेरा पिता है, और जैसे बच्चा पिता को कितना प्यार से याद करता है वैसे हम उसको करें उस रूप से समझते ही नहीं है। बल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु प्यार से याद भी करते हैं शिव को, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वो लव किसके साथ रखे? अब सब में परमात्मा है तो वो परमात्मा एक हो तो एक से प्यार करे ना, प्यार रखे। अब सब में परमात्मा है, सब ये परमात्मा ही परमात्मा है, सब भगवान ही भगवान है, तो फिर एक से तो प्यार नहीं होगा ना, तो वो लव किसके साथ रखे? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं, सर्वव्यापी के ज्ञान से भगवान से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, दिखाते ना, हे भगवान मदद करो, हे भगवान हाँ क्षमा करो, हे भगवान, माना एक को याद करते हैं तो वो प्रीत दिखाते हैं भगवान के लिए। कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत भगवान के मुख से गाई हुई, भगवान के मुख से गाए हुए महावाक्य, जिसको बाबा जिसको गीता कहते हैं। और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो, कोई शास्त्र में ऐसा नहीं है, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये केवल गीता के ही शब्द है जो भगवान के महावाक्य है। कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमत दी हो। गीता ही वो शास्त्र है जिसको कहते श्रीमत भगवत गीता, तो श्रीमत भगवान की गीता के द्वारा मिलती है। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है, एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहते हैं, भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है, ये भगवान तो निराकार के तरफ ही दृष्टि जाती है। अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे, सभी धर्म पिताओं को भी ऐसे ही दिखाया, अंगुली से ऊपर इशारा किया हुआ, तो अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। अब श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण की को याद करेंगे तो अंगुली ऊपर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो देहधारी है ना, देहधारी तो इसी दुनिया का है, परमात्मा तो निराकार है, वो इस दुनिया का नहीं है, इसलिए कहेंगे ऊपर वाला जाने। हाँ, भगवान को याद करो, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए तो ऊपर से जैसे आ जाए वो बुलाते हैं। श्री कृष्ण को तो ऐसे नहीं बुलाएंगे ना, ऊपर से आ जाओ, तो कहेंगे यहाँ ही है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो देहधारी है ना, तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है। शिव बाबा के साथ हमारा क्या संबंध है उसका पता पड़ा है, इसीलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है, अभी वो भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो नशा बहुत चढ़ना चाहिए। वही भगवान जिसको हम याद करते थे वही हमें पढ़ा रहे हैं, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए, और नशा भी स्थाई चढ़ना चाहिए। जैसे नहीं मुरली सुनते समय तो नशा चढ़ा और मुरली पूरी हुई नशा उतर गया, ऐसे नहीं, स्थाई चढ़ना चाहिए नशा। ऐसे भी नहीं कि ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, जो टीचर है वो सामने है वो तब नशा चढ़े, और ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते, ऐसे कह देते हैं ना थोड़ा, भाई ब्राह्मणी टीचर तो है नहीं, पता नहीं कौन कौन मुरली सुनाते हैं, तो हम तो नहीं जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बस वो क्या समझते, बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं कहां से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है, बाबा की मुरली सुनाना ये तो सिंपल है, हर एक सुना सकता है, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बिगर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं, अंधे भी हो जाते लूले भी हो जाते हैं, लूले माना हाथ ही नहीं चलता है, और अंधे माना दिखाई नहीं देता, तो एक है लूले दूसरे लंगड़े, तो लंगड़े माना टांग नहीं चलती टांग, और लूले माना हाथ नहीं चलते, तो लूले और अंधे हो जाते हैं टीचर नहीं है तो, इसका भी राज होगा ना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना ही छोड़ देंगे, अरे बहुत बैठे हैं क्लास नहीं चला सकते हो, आप नहीं क्लास चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना, ऐसे थोड़ी है जो मेन गुरु होता है वो एक ही जगह रहता है, वो तो जाता रहता है तो दूसरे संभालते हैं ना। तो बच्चों को सर्विस करनी है, स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं, बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है, हाँ जो मुख्य होशियार टीचर है कहाँ उनको भेजना पड़ता है। तो बच्चे इतने वर्ष जो सीखे हैं और बच्चे कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाए आपस में मिलकर, क्या इतनी भी धारणा नहीं है जो स्टूडेंट्स आपस में मिलकर सेंटर को चलाए। मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं, सुनने की आदत पड़ी फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं है, केवल सुनते हैं पर सुनाना भी है मुझे वो आदत पड़ती नहीं। याद में रहे तो धारणा भी हो, फिर धारणा भी हो, फिर सुनाने की आदत भी हो, तब वो कब होगा जब याद में भी रहे। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे अच्छा ब्राह्मणी जाती है हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहाँ अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए, ब्राह्मणी बिगर मूंज नहीं जाना चाहिए। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे बाबा को लिखते बाबा यहाँ टीचर नहीं है टीचर भेजो तो बाबा कहते क्यों आपस में आप लोग मिलके नहीं चला सकते हो जो टीचर की मांग नहीं करते हो। तो कहां अच्छे सेंटर पर भेजा है अगर टीचर को सर्विस के लिए, तो ब्राह्मणी बिगर गूंज नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। मुरली तो सबको मिलती है, हमारे अभी तो ये सब वश है जो हमारी माताएं भी मुरलीधर बन गई है। वहाँ जर्मनी में एक बहन है, वो पुष्पाल दादी वहाँ रहती थी, तो उसने इतना बाबा की मुरली को ग्रहण किया और पुष्पाल दादी उसको देती थी मुरली सुनाने लिए, तो बस नाम ही उसका पड़ गया मुरलीधर। तो मुरलीधर बहन, मुरलीधर बहन, उसका ओरिजिनल नाम तो किसी को पता ही नहीं, मुरलीधर ही नाम रखा है। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। हम तो एक सेंटर पर गए थे, वहां छोटी सी बच्ची 4 साल की, अब स्कूल बोल नहीं गई है, लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आती थी गद्दी पर बैठ जाती थी और कहती थी मुझे मुरली दो। अब मुरली लेकर के अब क्या पढ़ती है पता नहीं, पढ़ना लिखना आता नहीं है, 4 साल की अभी तो स्कूल भी नहीं गई, लेकिन बस ऐसे मुरली पढ़ेगी और इतनी ध्यान से पढ़ेगी जैसे कि वो सबको जानती है। फिर उनसे पूछो क्या बाबा ने कहा तो ज्ञान भी सुना देगी, लेकिन मुरली पढ़ना नहीं जानती होगी। पूर्व जन्म की वो बहन टीचर होगी, तो जैसे अगले जन्म में बाबा की मुरली वो बचपन से ही जैसे एक संस्कार बन गया सुनाने का। तो बाबा कहते हैं, सर्विस के लिए छुट्टी ले, हाँ तो बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो, तो कोई भी नहीं निकलते सर्विसेबल। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए, जहां भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहां पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वो ऐसी सर्विस कर सकते हैं, अब बंधन होंगे तो फिर कहां जा सकेंगे सेवा करने। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है, वहां भी दुनिया में भी ये खुश सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, वो सिक्योर जॉब होता है। हाँ, वो जो दूसरे प्राइवेट है वो कभी भी निकाल सकते हैं ना, लेकिन गवर्नमेंट जॉब माना जैसे परमानेंट जॉब होगा, फिर पेंशन भी मिलती है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बाबा कहते वो भी क्या प्राप्ति होगी। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है, भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है सोचो तो सही, कमाई एक जन्म में करते हैं और 21 जन्म तक वो कमाई खाते रहते हैं, तो कितनी भारी कमाई है, कितनी भारी कमाई है। उस कमाई से क्या मिलेगा, जो दुनिया में कोई भी चलो गवर्नमेंट जॉब भी है या कुछ भी बड़ा जॉब है, अच्छा है, अच्छा पैकेज है, पैसा मिलता है बहुत, लेकिन बाबा कहते हैं क्या कमाई है, उस कमाई से क्या मिलेगा, अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो, जिनको पक्का निश्चय है वो तो कहेंगे हम इसी सर्विस में लग जाएं, इसी सर्विस में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए, इसी सर्विस में लगना है तो पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं, है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ों मनुष्य है, सत्युग में जरूर थोड़े होंगे, चक्र पर भी समझाना सहज है, कैसे सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, कलयुग में कितने ढेर है। तो बाबा कहते ज्ञान सुनाना मुश्किल थोड़ी है, सत्युग में जरूर थोड़े होंगे, उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, ये लगती ही तब है, कब लगती है महाभारत लड़ाई, कब लगती है, जब भगवान आकर सत्युग के लिए राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते, तभी महाभारत लड़ाई लगती है। जब भगवान आकर सत्युग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कर्मातीत अवस्था की भी एक यात्रा है। कल सुदेश दीदी ने बहुत अच्छा क्लास कराया ना इस पर पट्टी में, कर्मातीत स्थिति की यात्रा, कैसे कर्मातीत स्थिति को पाते हैं, बाबा ने कैसे पाई, हमारी दादियों ने कैसे पाई। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं, कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ नाम एकम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही मेहनत है। ज्ञान बहुत सहज है, सुनना सुनाना बहुत सहज है, पर मेहनत है याद की, यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते, बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है, भक्ति मार्ग चलना ही है। ये हो नहीं सकता कि सत्युग त्रेता के बाद द्वापर कलयुग आए तो भक्ति मार्ग न चले, वो भी चलना ही है। खेल बना हुआ है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है, एक है हद का वैराग्य और दूसरा है ये बेहद का वैराग्य, जो बाबा बच्चों को सिखाते हैं बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो। बेहद का वैराग्य किसको कहेंगे, सारी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो, विकारी दृष्टि जा न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई, किसी पर भी कोई भरोसा नहीं है। हाँ ये तो बुजुर्ग व्यक्ति होगा, इसकी दृष्टि पवित्र होगी, लेकिन कुछ पता नहीं है कलयुगी दुनिया में। इसलिए कहते हैं ना, आप भय बूढ़े तृष्णा भय जवान, बूढ़े होते जाते तृष्णा जवान होती जाती है, कलयुग का तो ये हाल है। तो बाबा कहते हैं आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नरक। परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़ी है, स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। खुद का ही पता नहीं तो स्वर्ग का नरक का क्या पता, ये सब यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया वो कह दिया, ये कोई स्वर्ग नहीं है, इस कलयुग को हम स्वर्ग नहीं कह सकते। स्वर्ग में तो किंगडम थी, वहां तो राजा ही थी, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो ये थोड़ी कलयुग को हम स्वर्ग कहेंगे। रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था उनमें। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, क्यों आते हो यहाँ, विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है वो तुमको पढ़ाते हैं। तो बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, फिर बाबा याद दिलाते हैं मुरली सुनते सुनते, हाँ नशा चढ़ जाना चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए, बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वो छोड़ देनी है। आज बाबा ने कौन सी पुरानी आदत को याद किया होगा, कभी तो बाबा कहते हैं क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, मोह को जीतो, अभिमान को जीतो, आज बाबा ने कौन सा विकार कहा होगा बच्चों, हाँ ईर्ष्या, आज बाबा ने ईर्ष्या को याद किया है। ईर्ष्या कितनी होती है, इसको मिला मुझे क्यों नहीं, ये करती मैं क्यों नहीं, मैं करते रहते ना, तो बाबा कहते इसको ईर्ष्या। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है, ईर्ष्या बुरी बलाय, ईर्ष्या बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है, तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है, अब क्या ईर्ष्या रहती है, मुरली तो कोई भी सुना सकते पर ईर्ष्या क्या रहती है, नहीं फलानी मुरली सुनाएगी तभी मैं मुरली सुनूंगा, अब दूसरा दूसरी बहन आई नहीं उनके मुख से मुरली नहीं सुनूंगा। अरे मुरली किसकी है, तो भगवान की है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है, ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये कोई टीचर थोड़ी है जो हमको मुरली सुनाई, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई है जिस कारण डिसर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है, बहुत सहज सेवा में लग सकती है। उनसे पूछा जाता है कुमारियों से कि वो पढ़ाई अच्छी या ये पढ़ाई अच्छी, बाबा पूछते थे वो पढ़ाई अच्छी या ये पढ़ाई अच्छी, तो कुमारियां क्या कहती है, वो कहती है ये पढ़ाई बहुत अच्छी है बाबा, अभी हम वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती है। खुद ही कई बार कहती है बाबा अभी मुझे वो पढ़ाई नहीं पढ़नी है। कई बार माताएं लेके आती अपनी बच्चियों को और बच्चियों को लेके आती मेरे पास, कई बार आए हैं, तो कहते अब ये कहती है मैं पढ़ाई छोड़ू और मैं कहती हूँ तुम पढ़ो अपने पांव पर खड़ी रहो, वो कहते नहीं मुझे तो बाबा की सेवा करनी है, अब क्या करे। तो हम उनको कहते अगर ये चाहती है मैं बाबा की सेवा करूं तो उनको मना नहीं करो, बाबा की सेवा करेगी, इतना पढ़ लिया और क्या पढ़ना है। फिर कई आते हैं माताएं आती है वो कहती है कि मैं बेटी को कहती हूँ नहीं पढ़ो बाबा की सेवा में लग जाओ, वो कहते हैं नहीं मुझे पढ़ना है, तो क्या करे। फिर पूछते हैं तो हम कहते हैं अगर इसकी इच्छा है पढ़ने की तो मना नहीं करो, नहीं तो कहेंगे माँ ने मुझे रोका, टीचर ने रोका इसीलिए छोड़ा, तो अभी वो न यहाँ की रहेगी न वहां की रहेगी, इसीलिए वो जो चाहे आप उस अनुसार करो। तो इसलिए कई बेचारे मुंह जाते क्या करें। तो बाबा कहते हैं उनसे पूछा जाता है वो पढ़ाई अच्छी है या ये पढ़ाई अच्छी, तो कहती है ये बहुत अच्छी है बाबा, अभी हम वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती, लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएगी। बाप कहेगा नहीं तुमको पढ़ना ही है। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएगी। फिर कोई बच्चियां कमजोर भी होती है, समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से तो हम महारानी बनेंगे। बाप को समझाए कि इस पढ़ाई से, बाबा की पढ़ाई से तो महारानी बनेंगे, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी, ये पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक कहेंगे ना, जो भी स्वर्ग में है वो सब स्वर्ग के मालिक है, अभी तो सब है नरकवासी। अब बाप कहते हैं तुम सर्व गुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते आए हो, भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे अभी किसकी चिड़िया है, सोने की चिड़िया कहते थे अभी ठिक्कर की भी नहीं है, ठिक्कर हाँ ठिक्कर और ठोबर कहते ना, भित्तर और ठिक्कर ये सिंधी शब्द है, भित्तर और ठिक्कर। तो कई पूछते भित्तर क्या होता है ठिक्कर क्या होता है, तो भित्तर माना पत्थर के टुकड़े टुकड़े, उसको भित्तर कहते हैं सिंधी में, और ठिक्कर माना ठिकरी, होते ना मिट्टी का घड़ा होता है वो टूटता है तो वो मिट्टी के घड़े के टुकड़े टुकड़े उसको ठिक्कर कहते हैं ठिकरी। तो वो भित्तर और ठिक्कर, वो पत्थर के टुकड़े वो मिट्टी के टुकड़े, तो इसलिए भित्तर और ठिक्कर कई पूछते हैं क्योंकि सिंधी शब्द है ये। तो बाबा कहते अभी तो ठिकर की भी नहीं है ये दुनिया का हाल, भारत 100% सॉल्वेंट था अब 100% इनसॉल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं, है तो मनुष्य ही, पारसनाथ और पत्थरनाथ है तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुनाना, कौन सा गीत था? हाँ, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक हैं। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते क्या हो गया है, आखिर दुब्बन में गले तक फंस पड़े हैं। दुब्बन होती है ना एकदम गीली मिट्टी, उसमें अगर पांव पड़ गया और पांव नीचे जाता जाएगा एकदम सिर तक आ गया, फिर सिर भी नीचे हो जाता, सिर भी नीचे चला गया तो फिर चोटी होती है, फिर चोटी से पकड़ करके उनको निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं गिरते गिरते एकदम दुब्बन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुब्बन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं। अब हाथ भी अंदर चले गए, पूरा शरीर ही अंदर चला गया, सिर भी अंदर चला गया, तो वह चोटी को ऊपर से पकड़ सकते हैं। तो चोटी से पकड़ना सहज है, दुब्बन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुब्बन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। अब इनसे आगे क्या कहेंगे, दुब्बन में इतने फंसे हुए हैं इसलिए बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना, अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने, लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। ये विश्व के मालिक थे ये भी क्या पता, पर चलो महाराजा महारानी कहेंगे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, पर ये विश्व के मालिक चलो थे कहीं भी, पर कैसे बने वो तो कोई नहीं जानता। ये विश्व के मालिक कैसे बने, अभी तुम कितने समझदार बने हो, तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण का भी चित्र देखेंगे तो हमको तो समझ है ना कि इन्होंने ये राज्य भाग्य कैसे पाया। फिर 84 जन्म कैसे लिए, अब बिरला वाले कितने मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जगह जगह बनाते रहते हैं बिरला वाले, तो बिरला वाले कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु बाबा कहते जैसे गुड़िया बना लेते हैं, गुड़िया बना लेते हैं, वो छोटी छोटी गुड़िया ये फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं। कई मंदिरों में जाएंगे ना, विदेशों में तो हमने देखा कि ये मंदिर होता है वहाँ, और हिंदू लोग जो होते हैं अभी कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को, कोई किसको, तो एक ही मंदिर में सारे देवी देवता रख दे, छोटी 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 मूर्तियां। अब जो जिसका भक्त है वो उसको वो मिल जाएगा अपना इष्ट। तो और बिरला वाले जो बनाते वो तो बड़ी मूर्ति बनाते हैं लक्ष्मी नारायण की, छोटी नहीं बनाते बिरला वाले, वो तो और केवल लक्ष्मी नारायण ही बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो तो बिरला वाले कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं, वो छोटी छोटी गुड़िया, जो ऐसे मंदिर होंगे जहाँ वो छोटे छोटे छोटी मूर्तियां, तो वो छोटी छोटी गुड़िया, और ये फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं बिरला वाले, बहुत लक्ष्मी नारायण का बहुत बड़ा स्टैचू बनाते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन न जानना। क्यों बाबा उनको गुड़िया कहते हैं, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं है, ये कौन है, कब आए, कैसे इतने ऊंच बने, तो उनका ऑक्यूपेशन न जानना तो गुड़ियों की पूजा ही हुई ना। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं, जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी, कितना गलत है, भगवान थोड़ी पुजारी बनता है, वो तो सदा ही पूज्य है। तो भगवान के लिए कह देते आप ही पूज्य आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो आप ही दुख देते हो, ये भी फिर कह देते हैं भगवान के लिए, सब कुछ आप ही करते हो। कई गीत है इस पर, तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तो जो भी दे दे करता सबसे प्यार है, तो इसलिए तू ही सब कुछ देता है, सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते हैं फिर क्यों ऐसे मस्त हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा तो हाँ निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छेप लगता है, फिर गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा, सब पाप धुल जाएंगे गंगा स्नान करके, आ बाकी आत्मा को तो कोई लेप छेप लगता ही नहीं है, ऐसे समझते हैं। जो चाहो सो खाओ, क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वो चल पड़ता है। अब वो बाप समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय में, विषय सागर से चलो शिवालय में। सत्युग को क्षीर सागर कहा जाता है, ये है कलयुग है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। उस दिन बाबा ने कहा चित्रों की जरूरत ही नहीं है, हाँ क्योंकि ज्ञान तो कितना सहज है, चित्र क्या करेंगे, लेकिन नयों के लिए जरूर बाबा कहते चित्रों की जरूरत है। तो चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृतांत है, इतनी सहज बात भी किसको समझा दे सकेंगे, तो बाबा समझेंगे है ज्ञान कितना सहज, पर इतनी सहज बात भी अगर किसी को समझा नहीं सकेंगे तो बाबा समझेंगे क्या, बाबा समझेंगे अगर किसी को नहीं समझा सकते तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते ही नहीं है, खुद ही नहीं समझा है तो दूसरों को क्या समझाएंगे, इसका मतलब पढ़ाई पूरी नहीं की है, पढ़ाई पूरा पढ़ते ही नहीं है तो उन्नति नहीं करते हैं। अब तुम बच्चों को क्या करना चाहिए, हा? तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना, सब भ्रमरी है, आप समान बनाना भू भू कर। और तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारा ये कर्तव्य है सबको भू भू कर ज्ञान सुना सुना कर उनको पंख दिलाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है, अपने लिए क्या पुरुषार्थ है, औरों के लिए तो पुरुषार्थ है कि भू भू कर उनको ज्ञान सुनाते रहना उनको पंख दिलाना, अपने लिए पुरुषार्थ क्या है, अपने लिए पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नहीं लेने का, देवभान से परे होने का। तो ये सर्प का मिसाल अपने लिए, सर्प कैसे चमड़ी एक खाल उतारता अंदर नई चमड़ी आती है, तो हम भी आत्मा अशरीरी बन जाए, ये शरीर जैसे है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सर्प के मिसल, ये तुम्हारा पुरुषार्थ अपने लिए, सर्प के मिसल पुरानी खाल नहीं छोड़ नहीं लेने का। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है, ये दुनिया भी पुरानी है शरीर भी पुराना है, खाली शरीर भी नहीं दुनिया तो नहीं, सब कुछ दुनिया माना सब कुछ दुनिया में पुराना ही है, शरीर भी पुराना है, ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए, ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर आए, सुनामी आती है तो देखो कितना मीटर हाई, इतना ऊंचा, हाँ इतनी ऊंची लहर चली जाती है और फिर सबको हप कर लेती है, सबको सागर में डाल देती है सुनामी। किसी ने अनुभव किया है सुनामी का, हाँ नहीं किया, किसने एक हाथ उठाया, नहीं किया, बहुत जबरदस्त है। एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया था, मैं कई बार सुनाती हूँ, और श्रीलंका में मैं जब गई थी तो वहाँ वो बता रही थी, वो एयरपोर्ट पर छोड़ने आई थी और बड़ी बिजनेस वुमन, तो बता रही थी कि कैसे हम जब सुनामी आया, इंडोनेशिया में आया था लेकिन उसका असर श्रीलंका में भी आया, तो वो सागर पर टहल रही थी, उसके साथ दो बहनें और थी उसकी सहेलियां, तो वो टहल रही थी और अचानक इतनी जोर से वो सुनामी की लहर आई, इतनी जोर से, और ये सब जो भी थे सागर के किनारे सबको वो लहर बहा के ले गई, और उसी समय इसने क्या कहा, बाबा बाबा, हाँ जोर से बाबा कहा, और जैसे बाबा कहा तो कहती है कि चमत्कार हो गया, एक ऐसी लहर आई, नहीं तो वो लहर तो सागर में ले जा रही थी, लेकिन उसी समय एक ऐसी लहर आई जो एकदम पीछे की ओर ले गई, और मैं उस लहर में थी और मुझे वो लहर ने वापस धरती पर भेज दिया, और वो दो बहनें तो बह गई, वो तो मर गई, लेकिन मेरे को बाबा ने बचा लिया क्योंकि मैंने कहा बाबा, तो बाबा ने जैसे मुझे गोद में ले लिया और फिर कहा कि बस अभी ये बाबा ने मुझे नया जीवन दिया है, नया जन्म दिया है बाबा की सेवा के लिए। तो देखो उसने अपना अनुभव सुनाया कैसे सुनामी में वो ऐसे बह गई पर बाबा ने बचा लिया। तो बाबा कहते हैं एक ही सुनामी की लहर आएगी, तो बाबा कहते हैं सागर की एक ही लहर से सारा डावा डोल हो जाएगा, विनाश तो होना ही है ना, नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है, परंतु जो बाबा के अब याद में होंगे तो बाबा तो कैसे उनकी रक्षा भी करता है। तो नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है, ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है, भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूकर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है, इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान, मनसा बंधनों से मुक्त अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। मनसा बंधनों से मुक्त अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। अति इंद्रिय सुख में झूमना ये संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, अति इंद्रिय सुख में झूलना ये संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं करने देते, व्यर्थ संकल्पों ईर्ष्या अलबेलेपन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का भी दोष सोचती रहती है, वो आत्मा ईर्ष्या के वश है तो दूसरों का भी दोष सोचती रहती है, उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो तब मुक्ति दाता बन सकेंगे। स्लोगन, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए, ऐसा खुशियों के खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने के लिए सहज साधन एक ही है, वो बीज को फलीभूत बनाने लिए क्या है सहज साधन, वो है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना, बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे, संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। हम मैं भी बीज, बाबा भी बीज, उस बीज से मैं शक्ति ले रही हूँ, तो संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे, उसके बाद जो भी भट्ठी में आए हुए भाई बहने हैं, चाहे सेवाधारी भट्ठी में जो आए हैं, भट्ठी में आए हुए सेवाधारी भी सब बैठे रहेंगे, और आज आपको अभी शशि बहन आएंगे और आपको सौगात देंगे बाबा के घर से। इसीलिए कोई भी जाए नहीं, अगर कोई यहाँ नहीं हो तो जरूर उनको बुलाएं, सबको आज भट्ठी वालों को सौगात शशि बहन अभी आकर देंगे, इसलिए कोई भी उठेंगे नहीं। ओम शांति। चलो बाबा को याद करें।